ओम शांति। हम सभी के बीच में पधारे हैं रूहानियत की मूर्ति, शीतलता की देवी और सरलता की धनी आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता बेन। हम सब एक हाथ की अव्यक्त ताली से दीदी जी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। बाबा के यज्ञ में पिछले 45 वर्षों से आप अपने जीवन की यात्रा को चला रहे हैं और 35 से भी अधिक वर्ष हुए आपकी समर्पण जीवन की यात्रा को। आपने MBBS की डिग्री प्राप्त करने के बाद बाबा के यज्ञ में अनेक स्थानों पर सेवाएं दी और फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में भी आपने कुछ वर्ष अपनी ईश्वरीय सेवाओं का लाभ दिया। 2001 से आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी प्रकाशमणि जी के पर्सनल डॉक्टर भी रहे हैं। यह आपका बहुत ही बड़ा सौभाग्य रहा है दादी जी के अंग संग रहने का। आप मानसरोवर परिसर में हो रही ईश्वरीय सेवाओं का सफल संचालन करते हैं। महिला प्रभाग की सेवाओं को हम पूरे देश के अंदर जो इतना जोर शोर से बढ़ा हुआ देख रहे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप महिला प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और आज एक बहुत अच्छे विषय के साथ आप पधारे हैं जो हम सभी के ब्राह्मण जीवन के अंदर उपयोगी नहीं लेकिन अनिवार्य है। स्वमानधारी सो सम्मानधारी, हम सब सुनेंगे आदरणीय डॉक्टर सविता बेन जी।
ओम शांति, ओम शांति। हम सभी को प्यारे बाबा ने हम सो हम का मंत्र, उसका सही अर्थ समझाया है। हम क्या थे, अभी क्या हैं और क्या बनने वाले हैं, यानी तीनों कालों की स्मृति बाबा ने हमें दिलाई है। तो मैं आत्मा हूं ये ज्ञान तो है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं ये विशेष ज्ञान बाबा ने हमें दिया, और मैं कौन सी आत्मा हूं यही हमारा स्वमान है। हम सब जानते हैं बाबा ने हमें कितने श्रेष्ठ टाइटल दिए हैं। बाबा कहते हैं ऐसे टाइटल दुनिया में किसी भी VIP के नहीं हो सकते, चाहे कोई राजनेता है, चाहे कोई धर्म नेता है, चाहे कोई अभिनेता है, लेकिन कोई भी इतने टाइटल के अधिकारी नहीं हो सकते। हम सब जानते हैं बाबा ने हमको क्या क्या स्वमान दिया है, भगवान हमें कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। हम कौन हैं? ईश्वरीय संतान हैं। आज भी बाबा ने कहा कि हम ईश्वरीय गोद में हैं अभी, और ये सबसे ऊंच है। भविष्य में तो हम देवताओं की गोद में होंगे। फिर हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, डायरेक्ट ब्रह्मामुख वंशावली हैं। हम ही पद्मा पदम पति बनने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, विघ्न विनाशक हैं, विजयी रतन हैं या कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, या सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने इतने स्वमान हमें दिए। तो शिव बाबा कहते हैं भगवान की हु इज हु की लिस्ट में कौन है, दुनिया की हु इज हु की लिस्ट होती है तो उसमें नामी ग्रामी पर्सनालिटीज का नाम होता है, लेकिन शिव बाबा की हु इज हु की लिस्ट में कौन है, हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जिस नजर से बाबा हमें देखते हैं वही हम अपने आप को स्वीकार करें और उस स्मृति में रहें, यानी उसके हम स्मृति स्वरूप बने। जब तक हम स्मृति स्वरूप नहीं बनते तब तक हमें वो समर्थ ही नहीं आती है। जैसे दुनिया में भी हम कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा छड़े, जो हद के भी नशे होते हैं वो व्यक्ति को तब चढ़ते हैं जब वो अच्छी तरह से घोटा हुआ होता है। तो यहाँ भी घोटने का मतलब क्या है, बार 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 वो स्मृति हम अपने में लाएंगे तो उस नारायणी नशे का हम अनुभव करेंगे, ईश्वरीय नशे और खुशी का अनुभव हम अपने जीवन में करेंगे, या बाबा के समान स्थिति का अनुभव, उड़ती कला ऊंची स्थिति का अनुभव हमें तभी होगा जब इतनी श्रेष्ठ स्मृतियों में हमारा मन रहेगा। कभी कभी लेकिन हम संशय में आ जाते हैं, बाबा तो हमें इतना ऊंच सम्मान देते हैं, क्या सचमुच हम ऐसे हैं? जैसे एक कहानी आती है कि एक बार एक राजा का बेटा शिशु अवस्था में ही उसे भेड़िया उठा करके ले गया। राजा ने बहुत ढूंढवाया लेकिन नहीं मिला। बाद में वो जो राजकुमार था वो भेड़ियों के बीच में पलने लगा, क्योंकि वो एकदम छोटा था, तो जो भेड़िया था वो ये समझ नहीं पाया कि ये मेरा बच्चा है या इंसान का बच्चा है, तो वो उसको अपना ही बच्चा समझ करके पालने लगी और वो भेड़ियों के बीच में ही बड़ा होने लगा। तो निश्चित है भेड़ियों जैसा ही बोलना सीख लिया उसने, वैसी ही आवाज निकालना, ऐसे ही जैसे वो चार पैर से चलते थे उसी तरह से चलना, फिर वैसा ही उसका रूप भी बनने लगा। लंबे लंबे नाखून हो गए हाथ पैरों में और सब। 5 साल बीत गए। फिर 5 साल के बाद राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, तो ये जो भेड़ियों का झुंड है वो सामने से गुजरा। तो एक भेड़िया को देखकर राजा को डाउट हुआ कि ये रियल भेड़िया नहीं लगता है, ये कुछ और है। तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे पकड़ कर लाओ। तो जब सैनिकों ने उसे पकड़ा और उसे लेकर आए राजा के पास, तो देखा सचमुच वो भेड़िया नहीं था, क्योंकि मुंह तो इंसान का था ना, तो ये तो कोई इंसान है जो भेड़ियों के बीच में आ गया है। तो उसे उठाकर महल में ले आए और महल में उसको अच्छी तरह से नहलाया धुलाया, उसको साफ स्वच्छ किया, तो उसकी कुछ निशानी थी राजकुमार की, वो निशानी उनको मिली तो समझ गया राजा कि ये तो वही खोया हुआ राजकुमार है, लेकिन अब क्या बन चुका है, अब तो वो भेड़िया बन चुका है, अब तो वो इंसान भी नहीं रहा, राजकुमार तो दूर की बात है, अब उसको इंसान कैसे बनाया जाए। सबसे पहला चैलेंज तो ये, क्योंकि वो बिल्कुल आवाज भी भेड़ियों की निकाल रहा है, उसकी चाल ढाल सब। तो राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो इसको इंसान बना देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो उसको देख करके कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि किसी को लग नहीं रहा था कि हम ऐसा कर पाएंगे, लेकिन एक ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उसने कहा राजन मैं प्रयास करता हूं लेकिन मुझे समय लगेगा, मैं इसको, आप कहो कि मैं कुछ ही दिन में इसको इंसान बना दूं, ये मेरे बस की तो बात नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है तुमको जितना समय चाहिए मैं दूंगा। और फिर महीनों क्या साल बीत गया, उसने सिखाया कैसा इंसान चलता है, कैसे इंसान बोलता है ना, उसकी चाल ढाल खान पान व्यवहार सब की ट्रेनिंग दिया उसने। तो धीरे धीरे बुद्धि तो इंसान की थी ना, वो सीखने लगा और लगभग 1 साल से भी अधिक समय लग गया उसको अपने उस इंसान के रूप में आने में। फिर उसने राजा को बताया तो राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा ठीक है, अभी भी ये पूरी तरह से इंसान के रूप में नहीं आया है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे कर लोगे। लेकिन ये साधारण इंसान नहीं है, ये तो राजकुमार है, तो इसको राजकुमार की चाल चलन, राजकुमार के जो संस्कार, रॉयल संस्कार होते हैं, वो भी इसके होने चाहिए। तो वो भी उसको अभ्यास कराने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये महल में रहेगा तो फिर महल में रहने वाले राजकुमार का जीवन कैसा होता है वो भी सिखाना है, तो भी उसमें उसको वर्षों लगे। अब कहानी का भाव क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि वो राजकुमार नहीं था। लेकिन क्या हो गया, जब वो भेड़ियों के संग में आ गया तो भेड़िया बन गया और अपने आप को बिल्कुल भूल गया कि मैं कौन हूं। और उसको वापस इंसान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, हालांकि ओरिजिनली वो इंसान ही है, और राजकुमार बनाने में फिर और भी मेहनत करनी पड़ी। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, ऐसे नहीं कि हम आत्मा नहीं हैं, ऐसे भी नहीं कि हम देवी देवता नहीं थे, सर्वगुण संपन्न नहीं थे, 16 कला संपूर्ण नहीं थे। बाबा ने जो हमें इतना ऊंच श्रेष्ठ बनाया था, पूज्य बनाया था, महान बनाया था, वो सब थे हम। लेकिन द्वापर युग में हम माया के संग में आ गए, और माया के संग में पड़ते ही हम अपने आत्म स्वरूप को, स्वस्वरूप को पूरी तरह से भूल गए। और जैसे माया ने हमारा रूप बनाया वैसे हम बन गए। अब शिव बाबा आकर के फिर से हमें, जैसे वो फिर से राजमहल में आ गया, तो शिव बाबा फिर से आकर के हमें वो स्मृति दिलाते हैं। लेकिन वो एक दिन में फिर से राजकुमार नहीं बन गया, मेहनत लग रही थी उसको। ऐसे ही बाबा हमें मेहनत करवाते हैं। तो ये बार बार स्मृति में लाना और स्मृति स्वरूप बनना, ये हमारा पुरुषार्थ है। तभी हम अपने उस स्वस्वरूप में स्थित, उस स्वमान में स्थित हो पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि हम स्वीकार करें। हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं जब तक हम अपनी सीट पर सेट हैं, उस स्वमान की सीट पर सेट हैं, तो फिर माया भी हमारे ऑर्डर पर चलती है। लेकिन माया हमें सीट से उतारने की कोशिश करती है, जैसे उसमें होता है ना राजनीति में, ओपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं वो सीट से उतारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी माया हमें हमारी सीट से उतारने की कोशिश करती है, और अगर हम सीट से उतर जाते हैं तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। अपनी शान से परे होना माना परेशान होना, या माया के वश हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं उसमें भी अगर कोई सीट पर नहीं है तो कोई उसका ऑर्डर नहीं मानता। तो यहाँ भी हमारी कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर में रहें, हम माया जीत बने, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी इस सीट पर सेट रहें जो बाबा ने हमें दी। और जो स्वमानधारी होगा वो सदा ही देह अभिमान से मुक्त होगा। देह अभिमान से हम मुक्त होते हैं इस समय, तभी हम न सिर्फ संगम युग पर लेकिन पूरे कल्प में सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं ना। स्वयं भगवान सबसे पहले हमें सम्मान देते हैं, शिव बाबा आकर के रोज हमें याद प्यार और नमस्ते देते हैं। बाबा हमें मालिकम सलाम कहते हैं, यानी बच्चों का मैं आज्ञाकारी सेवाधारी हूँ। फिर देवी देवताओं के रूप में भी हम रॉयल रूप से सम्मान के अधिकारी होते हैं। द्वापर युग में जब पूजा शुरू होती है तो जो भक्त हैं वो कितनी श्रद्धा भावना से अपने इष्ट की पूजा करते हैं, और इसीलिए बाबा कहता है कि देवी देवताओं की जितनी विधि पूर्वक पूजा होती है उतनी और किसी की नहीं होती। जो साजों और बाजों के साथ कीर्तन होता है, हर कर्म की पूजा होती है, वो और किसी धर्म में नहीं होती है इतनी रॉयल विधि से। तो इतना सम्मान भक्तों के द्वारा भी मिलता है और फिर वर्तमान में भी बाबा कहते हैं सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, क्योंकि हम देने वाले दाता हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर एक को सम्मान दिया, सम्मान भी दिया और सम्मान भी दिया, बाबा ने छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। बच्चों को भी होवनहार विश्व कल्याणकारी की नजर से देखा। बाबा के पास बोर्डिंग में छोटे बच्चे पढ़ते थे ना ओम मंडली के समय में, तो बाबा उनको इस नजर से देखते थे और सचमुच जो दादियां थी वो हमारी विश्व कल्याणकारी बनी, विश्व सेवाधारी बनी, पूरे विश्व की सेवा की उन्होंने। फिर जो यूथ थे उनको बाबा कहता था जिसको आज दुनिया असंभव समझती है ये उसको संभव करके दिखाने वाले हैं, ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले हैं। तो सचमुच आज लाखों हैं ऐसे यूथ, बाबा ने जिस नजर से देखा। और फिर बाबा ने जो भी बुजुर्ग थे उनको अपना हमजींस समझा, क्योंकि बाबा खुद भी बुजुर्ग थे, तो उनको वो सम्मान दिया कि ये मेरे ही जैसी अनुभवी आत्माएं हैं। और जो बांधेलियां थी उनको बाबा हमेशा ये कहते थे ये तो योग में नंबर वन है, इनके जैसा योग तो किसी का भी नहीं है। तो हरेक की जो विशेषता थी उस विशेषता से उनको सम्मान दिया। तो हमको भी फॉलो फादर करना है, बाबा के समान हमें बनना है। तो हरेक आत्मा जो सम्मान की अधिकारी है, बाबा के जो भी बच्चे हैं, भले पुरुषार्थी होने के कारण कुछ कमियां उनमें हो सकती हैं, लेकिन जो विशेषताएं हैं उन आत्मा की उसको देखते हुए उसे सम्मान देना। फिर वो छोटा है बड़ा है, वो ज्ञानी है अज्ञानी है, चाहे वो माया के वश है, चाहे वो गुणवान है या अवगुण वाला है, सबको सम्मान देना। तो बाबा कहता है ऐसे बाबा के बच्चे वो गिरे हुए को भी उठाने वाले हैं या सबको सहयोग देने वाले हैं। ऐसे नहीं सोचेंगे कि इनके तो कर्म ही ऐसे हैं ना इसीलिए ये उसका ही फल भोग रहे हैं। तो अगर ऐसा संकल्प में भी किसी के प्रति आता है तो ये भी रौब का अंश है। तो कभी भी परवश को स्वतंत्र करने वाले होंगे। तो ऐसा सम्मान हम देने वाले बनते हैं तो स्वतः ही हमें भी सम्मान मिलता है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, इच्छा रखने से नहीं मिलता है, लेकिन जब हम देते हैं, विधि है, बाबा कहता है दो विधि है, एक तो स्वमान में रहेंगे तो सम्मान मिलेगा। तो स्वमान की स्थिति ही ऐसी है कि स्वतः ही हमें सम्मान का अधिकारी बना देती है। और दूसरा, हम देंगे तो हमें मिलेगा, अगर हम देंगे नहीं तो हमें मिलेगा भी नहीं। दुनिया में भी यही कहते हैं, लव बिगेट्स लव, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर देह अभिमान आ जाता है तो फिर बाबा कहते हैं देह अभिमान क्या है, देह अभिमान वाले की निशानी क्या होगी, स्वमान नहीं होगा तो अपमान की फीलिंग में बहुत जल्दी आ जाएंगे, ये निशानी है। अभिमान वाला कोई छोटी सी भी किसी की बात नहीं सुन सकता, एक छोटी सी बात में भी इतनी फीलिंग आएगी, तो अगर कभी हमें ऐसी फीलिंग आ जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो मैंपन है, अभी तक उसका अंश वंश हमारे अंदर है। जो सुमान वाले होंगे वो जितना ऊंचा नशा उतने ही निर्माण और उतना ही नव निर्माण करने वाले होंगे, ये स्वमानधारी आत्मा की निशानी है। लेकिन स्वमान कभी कभी कम हो जाता है क्योंकि हम विघ्नों के वश होते हैं या कोई ना कोई समस्या के अधीन हो जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं यानी उलझन में आ जाते हैं, बहुत सोच विचार में छोटी छोटी बातों में चले जाते हैं, तो फिर स्वमान की स्थिति से नीचे आ जाते। तो यहां पर फुल स्टॉप लगाना जो बाबा ने हमें सिखाया है, तो फिर से पुनः अपने स्वमान की स्मृति को ला करके उसको फिनिश कर देना है। तो रोज अमृत वेले हम अपने स्वमान को स्मृति में लाएं और उसके अनुभवी बने। इतने जो भी स्वमान दिए हैं, हम हरेक स्वमान को अनुभव में लाएं। हाँ, जैसे किसी दिन हम ले सकते हैं, मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, फिर दिल तख्त नशीन हूँ तो फिर दिल तख्त नशीन वाले की क्या विशेषता होगी, कौन सी ऐसी आत्मा बाबा की दिल तख्त नशीन हो सकती है, उसके ऊपर हम थोड़ा मनन करें। हाँ, जैसे बाबा हमेशा कहता है जो सच्चे दिल वाले हैं, जो बाबा के आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार हैं, वो बाबा के दिल तख्त पर यानी बाबा उन पर राजी होता है, या जो अकाल तख्त नशीन है वही बाबा के दिल तख्त नशीन है। तो ऐसे हम उस स्वमान की थोड़ा गहराई में जाते हुए उसे अपना बनाएं। तो हमेशा ही हम स्वयं को बाबा के दिल तख्त पर अनुभव करेंगे, या अपने पांच स्वरूपों का हम अभ्यास करें, जो हमारे पांच स्वरूप हैं उसमें काफी स्वमान आ जाते हैं हमारे। हमारा अनादि स्वरूप जो परम धाम में है, संपूर्ण स्वरूप है, संपूर्ण पवित्रता वाला रूप है वो हमारा, तो वो उस स्थिति में स्वयं को देखें। जैसे बाबा कहते हैं ना, रूहानी ड्रिल करो, एक सेकंड में जो स्थिति बनाना चाहे वो हमारी बन जाए। तो एक सेकंड में परम धाम में हम अपने उस अनादि स्वरूप में स्वयं को अनुभव करें, फिर देवताई स्वरूप हमारा डबल ताजधारी है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, वो स्वरूप को हम अपने दिव्य स्वरूप को अनुभव करें। फिर द्वापर युग के पूज्य स्वरूप को अनुभव करें कि कैसे भक्तों की मनोकामनाएं बाबा हमारे द्वारा, हमारे ही चित्रों द्वारा उनको अनुभव कराते हैं। और फिर संगम युग का जो हमारा वर्तमान रूप है, और फिर हम ब्राह्मण 100 फरिश्ता बनने वाले हैं, तो वो फरिश्ता रूप हमारा कैसे विश्व सेवाधारी स्वरूप है, अंतर्वाहक शरीर उसको बाबा कहता है, कि हम उसके द्वारा पूरे विश्व की आत्माओं की एक स्थान पर बैठे हुए सकाश देते हुए सेवा कर सकते हैं। और ये ब्राह्मण जीवन तो हीरे तुल्य हमारा जन्म है, जो आज भी बाबा ने कहा कि इस हीरे तुल्य जन्म को जो बाबा ने हमें दिया है वो हमारा पूरी तरह तन मन धन हम सफल करके जो ऊंचे से ऊंची प्रालब्ध बाबा हमारी बना रहे हैं वो हम बनाएं। तो ऐसे स्वमान के अभ्यास करते हुए हम सहज ही बाप समान अपनी स्थिति बना सकते हैं। लेकिन अगर विस्मृति में आ गए, स्मृति में है तो स्थिति है, लेकिन अगर विस्मृति में आ गए तो फिर स्वमान की सीट से उतरकर देह अभिमान में आ जाते हैं। और फिर वो देह अभिमान माया के और रूपों को, जैसे कहा ना देह अभिमान विकारों की जड़ है, और रूपों को भी फिर जन्म दे देती हैं। तो ये हमारा तीव्र पुरुषार्थ की विधि है कि हम स्वमान में स्थित होकर के अपने पुरुषार्थ में उड़ती कला का अनुभव करते हुए आगे बढ़ते चले। ओम शांति।